नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं लवलीन निगम। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कल मिस्र में विश्व नेताओं के साथ पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से गजा शांति समझौते को अंतिम रूप देंगे। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को चेतावनी दी, कहा काबुल के साथ संबंध बिगड़े तो वो अन्य विकल्प अपनाएगा। श्रीलंका में 2000 भारतीय मूल के तमिल लाभार्थियों को भारत सहायता प्राप्त आवास परियोजना के अंतर्गत पात्रता दस्तावेज प्राप्त हुए। भारत ने सुल्तान जोहर कप जूनियर हॉकी में न्यूजीलैंड को 4-2 से हराया और महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। गाजा में युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से समझौते को अंतिम रूप देने के लिए कल मिस्र के शर्म अल शेख में अंतर्राष्ट्रीय शांति शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी इस बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। इसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरश सहित 20 से अधिक देशों के नेताओं के शामिल होने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य गजा पट्टी में युद्ध समाप्त करना तथा पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता लाने के प्रयासों को बढ़ाना है, साथ ही क्षेत्रीय सुरक्षा तथा स्थिरता के एक नए युग की शुरुआत करना भी है।
ये सम्मेलन अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के क्षेत्र में शांति स्थापित करने के दृष्टिकोण और दुनिया भर में संघर्षों को समाप्त करने के प्रयासों के क्रम में हो रहा है। मिश्र के अनुसार शिखर सम्मेलन का उद्देश्य गजा में युद्ध को समाप्त करने और ट्रंप की शांति योजना के दूसरे चरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने के उद्देश्य से एक समझौते को अंतिम रूप देना है। इसका उद्देश्य हमास को निरस्त करना और पट्टी में एक नया शासी निकाय बनाना है। हालांकि इसराइल और हमास दोनों इस आयोजन में भाग नहीं लेंगे और फिलिस्तीन भी इसमें भाग नहीं ले रहा है। योजना के पहले चरण में गजा से इजरायली सैनिकों की वापसी, सहायता के लिए 5 क्रॉसिंग खोलना और बंधकों तथा कैदियों की रिहाई शामिल है। समझौते के अंतर्गत हमास के पास सोमवार तक सभी इजरायली बंधकों को रिहा करने का समय है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
इसराइल द्वारा गजा से लगभग 250 फलस्तीनी कैदियों और 1700 बंधकों को रिहा करने की उम्मीद है। इसराइली सेना ने कहा है कि उसने गजा के कुछ हिस्सों से सैनिकों को आंशिक रूप से वापस बुला लिया है, हालांकि सेना अभी पट्टी के आधे हिस्से पर काबिज है। इधर दक्षिण एशिया में अफगान तालिबान ने पाकिस्तान में हुए हमले की जिम्मेदारी ली है। इन हमलों में 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। तालिबान ने इसे पक्तिका प्रांत में हुए पाकिस्तानी हवाई हमले पर जवाबी कार्रवाई बताया है। तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि इस हमले में कई सीमावर्ती ठिकानों को निशाना बनाया गया और 30 पाकिस्तानी सैनिक घायल भी हुए। वहीं 9 तालिबान लड़ाके मारे गए और 18 घायल हुए गए। पिछले हफ्ते काबुल में हुए विस्फोटों और अफगान क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा कथित बमबारी के बाद तनाव बढ़ गया था। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी ने आज आगाह किया कि अगर पाकिस्तान अच्छे संबंध और शांति नहीं चाहता है तो अफगानिस्तान के पास दूसरे विकल्प भी हैं। दिल्ली में एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच संघर्ष पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान संप्रभुता की रक्षा करता रहेगा।
पाकिस्तान का आवाम और पाकिस्तान का जो सियासुन है,
पाकिस्तान के लोग अफगानिस्तान के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। हमें पाकिस्तान के नागरिकों से कोई समस्या नहीं है। अगर पाकिस्तान अच्छे संबंध और शांति नहीं चाहता तो अफगानिस्तान के पास ऐसी स्थिति में दूसरे विकल्प भी मौजूद हैं।
और नहीं चाहता है तो फिर अफगानिस्तान के पास और रास्ते भी है।
2 दिन पहले उनकी प्रेस वार्ता में महिला पत्रकारों को आमंत्रित नहीं किए जाने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि एक तकनीकी समस्या थी, क्योंकि ब्रीफिंग अल्प सूचना पर आयोजित की गई थी और पत्रकारों की एक छोटी सूची तय की गई थी। उन्होंने दावा किया कि इसके अलावा उनका कोई और इरादा नहीं था। सेशल्स के विपक्षी नेता पैट्रिक हर्मिने ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। उन्होंने निवर्तमान राष्ट्रपति वावेल रामकलावन को रन ऑफ मतदान से मात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति चुनाव में डॉक्टर पैट्रिक हर्मिने को जीत पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और सेशल्स दोनों हिंद महासागर से जुड़े देश हैं और उनकी आकांक्षाएं तथा जरूरतें भी समान हैं। विश्व दर्पण समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। श्रीलंका में भारतीय सहायता से संचालित आवास परियोजना के चौथे चरण में 2000 तमिल लाभार्थियों को पात्रता दस्तावेज मिले। ये कार्यक्रम राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके की देखरेख में बंदरवेला पब्लिक ग्राउंड्स में आयोजित किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये घर भारतीय आवास परियोजना के चौथे चरण का हिस्सा है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में सुदूरवर्ती क्षेत्र की अपने यात्रा के दौरान की थी।
श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अगले चरण की शुरुआत के साथ भारत ने चौथे चरण के तहत भारतीय मूल के तमिल समुदाय के लिए 14,000 घरों के निर्माण में अपना सहयोग आगे बढ़ाया है। भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने बताया कि अब तक भारत ने श्रीलंका के सभी 25 जिलों में 65,000 घरों के निर्माण के लिए 64 अरब श्रीलंकाई रुपए से अधिक की सहायता प्रदान की है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये पहल केवल घर बनाने की नहीं बल्कि भविष्य गढ़ने की है। वहीं श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा कुमारादिसनायके ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत की जनता और श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
भारतीय सेना इस महीने के 14 तारीख से नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदान देने वाले देशों के प्रमुखों के सम्मेलन UNTCC की मेजबानी करेगी। एक रिपोर्ट।
3 दिन के इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 32 देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी एक साथ आएंगे। दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैन्य योगदान देने वाले देशों के प्रतिनिधि मंडलों के कल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। एक बयान में रक्षा मंत्रालय ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र मिशनों में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक के रूप में भारत परिचालन चुनौतियों, उभरते खतरों पर विचार विमर्श करने, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और भविष्य की शांति स्थापना पर साझा समझ बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय मंच का आयोजन कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और शांति अभियानों के अवर सचिव जीन पियर लेक्रोइस ने कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। पूर्ण सत्र में प्रमुख और प्रतिनिधि मंडल प्रमुख अपने विचार रखेंगे। सम्मेलन के दौरान साझा क्षमता निर्माण, द्विपक्षीय और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए रक्षा प्रदर्शनियां भी आयोजित की जाएंगी। पल्लवी की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए शक्ति सिंह।
वहीं भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रिया हिंद का चौथा संस्करण कल से ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में शुरू होगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि 120 सैनिकों वाली भारतीय सेना की एक टुकड़ी इस वार्षिक अभ्यास में भाग लेने के लिए कल रवाना हुई। एक रिपोर्ट।
26 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभ्यास में भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व गोरखा राइफल्स की एक बटालियन और अन्य सेनाओं के सैनिक कर रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस अभ्यास का उद्देश्य सैन्य सहयोग को बढ़ाना तथा अंतर संचालन क्षमता में सुधार करना है। साथ ही इसमें शामिल होने वाली सेनाओं को शहरी या अर्धशहरी इलाकों में उप पारंपरिक युद्ध के क्षेत्र में रणनीति, तकनीकों और प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। यह अभ्यास खुले और अर्ध रेगिस्तानी इलाकों में संयुक्त कंपनी स्तरीय अभियानों पर केंद्रित होगा, जो सैनिक संयुक्त योजना, सामरिक अभ्यास और विशेष हथियार कौशल जैसे विभिन्न मिशन को अंजाम देंगे। पल्लवी की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए जया भारती।
कनाडा के विदेश मंत्री अनिता आनंद आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। वे कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ वार्ता करेंगी। श्रीमती आनंद वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से भी मुलाकात करेंगी। मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखाना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण पर कल से भारत की 4 दिन की यात्रा पर आएंगे। श्री उखाना द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी बातचीत करेंगे। खेलों में भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने आज न्यूजीलैंड को 4-2 से हराकर सुल्तान जोहर कप में अपना अजेय अभियान जारी रखा। भारत का अगला मुकाबला मंगलवार को पाकिस्तान से होगा। उधर ICC महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 331 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने 46 ओवर में 7 विकेट पर 305 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कल मिस्र में विश्व नेताओं के साथ पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से गजा शांति समझौते को अंतिम रूप देंगे। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को चेतावनी दी, कहा काबुल के साथ संबंध बिगड़े तो वो अन्य विकल्प अपनाएगा। श्रीलंका में 2000 भारतीय मूल के तमिल लाभार्थियों को भारत सहायता प्राप्त आवास परियोजना के अंतर्गत पात्रता दस्तावेज प्राप्त हुए और भारत ने सुल्तान जोहर कप जूनियर हॉकी में न्यूजीलैंड को 4-2 से हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।